एक माँ के एहसास को अनुभव करना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। ये कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नम्रता जी की बातें अरुणिमा बहुत ध्यान से सुन रही थी। जो वो कह रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग औरत किसी दूसरी औरत को आने वाले बच्चे के बारे में समझा रही हो। सच में? अरुणिमा के मुंह से ये निकल गया जैसे कि वो इन सब पर सच में यकीन करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर निशा मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखती है और कहती है, बिल्कुल अरुणिमा, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। माँ बनने का एहसास ही कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वैसे तो कभी कभी ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का पीरियड ऐसा होता है कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ता है। उस वक्त जब कोई तुम्हारे आसपास ना हो तो इतना गुस्सा आता है और इतनी चिड़चिड़ाहट होती है कि मन करता है किसी का सिर फोड़ दूं। निशा हंसते हुए आगे कहती है, पर ये सारी बातें बिल्कुल भी याद नहीं रहती जब पहली बार तुम अपने बच्चे को गोद में लेती हो। और ये तो बहुत दूर की बात है, जब पहली बार तुम अपने बच्चे की धड़कन मॉनिटर स्क्रीन पर सुनती हो ना, बस उसी वक्त एक अजीब सा लगाव हो जाता है। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार सोनोग्राफी के लिए गई थी तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। पर जैसे ही मैं ये सोचती थी, मुझे अपने बच्चे का एहसास होता था और मेरी सोच अचानक से बदल जाती थी। एक नन्हा सा जीवन मेरे अंदर पल रहा है, ये महसूस करके मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती थी। और जब मैंने पहली बार अपने बच्चे की धड़कन मॉनिटर पर सुनी थी, वो पल ऐसा था जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकती। उस वक्त तो मेरा पेट भी नहीं निकला था, लेकिन मैंने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखकर उसे ऐसे सहलाया जैसे मैं अपने बच्चे को सहला रही हूँ। निशा की इतनी प्यारी बातें सुनकर अरुणिमा इतनी भावुक हो गई कि उसका हाथ अपने आप उसके पेट पर चला गया। इन बातों के बीच आस्तिक बस खामोशी से बैठा था। उसे ना तो इस चर्चा में कोई दिलचस्पी थी और ना ही ये सुनना अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे वहीं बैठना था क्योंकि मिस्टर राय को आने में अभी टाइम था। वो रास्ते में थे और जब तक घर नहीं पहुंचते तब तक आस्तिक को यहीं रहना था और इन औरतों की बातों का हिस्सा बनना था। उसे बच्चों से जुड़ी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे डिलीवरी के दौरान क्या होता है ये जानने में कोई दिलचस्पी थी। लेकिन जब उसने निशा की बातें सुनकर अरुणिमा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी आ गई। अरुणिमा की आंखों में एक चमक थी, उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी। पर आस्तिक की नज़रें तब और तीछी हो गईं जब उसने देखा कि अरुणिमा ने धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रखा और उसे सहलाने लगी। भले ही उसने हाथ साड़ी के अंदर रखा था, लेकिन आस्तिक की नज़रें ये सब देख रही थी। अरुणिमा निशा से और भी बातें करना चाहती थी। उसे पूछना चाहती थी कि प्रेगनेंसी में और क्या क्या होता है। उसे बहुत कुछ जानना था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। निशा ने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट हुई और उसने अपनी माँ को ये खुशखबरी दी तो वो बहुत खुश हुई थी और उन्होंने उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी। लेकिन अरुणिमा के मामले में ऐसा होना नामुमकिन था। वो अपनी माँ को ये बताना तो दूर, उन्हें पता भी नहीं लगने देना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह का रवैया उनकी माँ का अरुणिमा के लिए था, उसके बाद ये हो ही नहीं सकता था कि अरुणिमा अपनी माँ को बच्चे की खबर दे और ये बात आस्तिक तक ना जाए। किसी और को ये बात बताने से पहले अपनी माँ को बताने की खुशी ही कुछ और होती है, लेकिन अरुणिमा के नसीब में शायद ये खुशी भी नहीं थी। उसके बाद निशा ने बताया कि जब उसने अपने पति राघव को इस बारे में बताया तो वो इतना खुश हुआ कि उसने निशा को अपनी गोद में उठाकर पूरे घर के चक्कर लगा दिए थे। ये बताते वक्त निशा कितनी ज़्यादा खुश थी। वो पल उनके लिए कुछ ऐसा था जैसे कि उनकी ज़िंदगी का सबसे अनमोल समय हो। लेकिन अरुणिमा, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो ना तो इस बारे में किसी को बता सकती थी और ना ही इसे किसी को पता लगने दे सकती थी। अगर उसने आस्तिक को ये बताया तो पहले वो उसके बच्चों को मार देगा और फिर अरुणिमा को। श्री राय वहाँ आ चुके थे। आस्तिक ने उनसे बिजनेस की बात की जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। डिनर करने के बाद अरुणिमा और आस्तिक घर वापस आ गए। पूरे रास्ते अरुणिमा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने आज पहली बार सुना था कि प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो इन बातों को जिस तरह सुन रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में इन पर अमल करने वाली हो। घर पहुंचकर उन्हें डिनर नहीं करना था क्योंकि वो पहले ही कर चुके थे। अरुणिमा अपने कमरे में जाकर आराम से पीठ के बल लेट गई और इंटरनेट पर प्रेगनेंसी से जुड़ी सलाहें पढ़ने लगी। अगर उसकी माँ उसके साथ होती तो शायद वो भी उसे यही सब बताती। उसने कई वीडियो देखी जिनमें उम्रदराज औरतें प्रेगनेंसी से जुड़ी बातें बता रही थी। अरुणिमा को पता चला कि उसे इस वक्त क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए। अल्कोहल और सिगरेट जैसी चीजें उसके आसपास भी नहीं होनी चाहिए। उसे ज्यादातर सेहतमंद खाना खाना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए। वीडियो स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नजर एक हंसते हुए छोटे बच्चे की तस्वीर पर गई। उसे देखकर अरुणिमा को अपने बच्चों का एहसास हुआ। उसके गर्भ में तो दो बच्चे थे, वो ऐसे ही अपने बच्चों को कैसे खो सकती थी। ये उसके जीवन की एकमात्र ऐसी चीज थी जो सिर्फ उसकी अपनी थी, जहां उसे किसी के एहसान तले नहीं जीना था, जहां उसे किसी के तिरस्कार को बर्दाश्त नहीं करना था। उसके बच्चे उसका स्वाभिमान होंगे। अगर आस्तिक से वो अलग भी हो जाती है तो भी अपने बच्चों के साथ एक अलग दुनिया बसा सकती है, जहां उसे किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं होगी। नमक रोटी खाकर भी सही, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। धीरे से अपना पेट सहलाते हुए अरुणिमा अपने मन में बुदबुदाई, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम दोनों माँ की जान हो और माँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने देगी। तुम दोनों मेरे पेट में धीरे धीरे आराम से बड़े होना। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ यहाँ है ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, और जब तुम दोनों बड़े होकर माँ की गोद में आओगे ना, तब माँ तुम दोनों को बहुत प्यार करेगी। तब तक एक दूसरे का ख्याल रखना। अगर तुम दोनों भाई हो तो एक दूसरे की ताकत बनना, बहन हो तो एक दूसरे को संभालना, और अगर भाई बहन हो तो कभी एक दूसरे से लड़ना मत, बल्कि हमेशा साथ रहना। ये मत भूलना कि इस दुनिया में तुम्हें लाने के लिए तुम्हारी माँ कितनी कोशिश कर रही है। मन ही मन अपने बच्चों से बात करते हुए अरुणिमा को ख्याल ही नहीं आया कि इस कमरे में वो अकेली नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला। अरुणिमा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। जब उसकी नजर आस्तिक के गुस्से से भरे चेहरे पर गई तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आस्तिक सीधे अंदर आया और उसके पास बढ़ने लगा। अरुणिमा घबराकर उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से अपना फोन बंद करके पीछे छुपा लिया, लेकिन आस्तिक झटके से उसके पास आ गया। अगले ही पल उसने अरुणिमा की बाजू पकड़कर उसे जोर से बेड पर गिरा दिया। उसकी पकड़ इतनी कस थी कि अरुणिमा की आंखों में दर्द तैरने लगा। आस्तिक उसके ऊपर झुका, उसकी सांसें तेज चल रही थी, वो गुस्से से उसे घूर रहा था। अरुणिमा छटपटाई और चिल्लाई, क्या कर रहे हो आस्तिक, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। आस्तिक ने उसे जोर से बेड पर दबाते हुए पूछा, क्या हुआ है तुम्हें। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई, लेकिन आस्तिक ने और ज्यादा जोर लगाया और गुस्से में गुर्राया, माँ बनने के दौरान क्या क्या होता है ये जानने में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों आने लगी। निशा से क्या बात कर रही थी तुम। वो थोड़ी देर रुका, फिर उसकी आंखें और तेज हो गईं। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो।